हेलो एवरीवन, दिस इज़ विष्णु महारे। बहुत टाइम के बाद एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड अभी से ये रेगुलर करने की कोशिश करूँगा दोबारा। एंड अभी कुछ टाइम पहले दोपहर को, आज दोपहर को मैं जब नोट्स कर रहा था इस एपिसोड के लिए, तो मैंने इसका टाइटल रखा था न्यू एपिसोड न्यू बिगिनिंग ऑफ 2024। आई डोंट नो कैसे स्टार्ट करना चाहिए। मैं इसको जितना हो सके कैजुअल रखना चाहता हूँ सबसे पहली बात, तो इस वजह से मैं इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड आई थिंक और भी पॉडकास्ट आएंगे जो काफ़ी कैजुअल कन्वर्सेशन की तरह होंगे। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये, और ऑलरेडी बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा रिकॉर्ड किया नहीं है, खास करके पॉडकास्ट। कुछ स्क्रिप्टेड वीडियोस डेफिनेटली बनाए मैंने, एक स्क्वाडकास्ट के ऊपर है आई थिंक, वो ब्लॉगर सेल्फ वाले चैनल पे आपको मिलेगा, इंग्लिश में वीडियो है वो। एंड हिंदी चैनल में आई थिंक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, बट टेक कंज्यूमर वाले चैनल पे वहाँ पर अपलोड करिए कुछ वीडियोस। वहाँ पे भी कब लास्ट अपलोड करी थी मेरे को याद नहीं है, तो काफ़ी टाइम से मतलब वीडियो नहीं बनाया मैंने। और जब भी आप वीडियो सुनाना बंद कर देते हो तो वो जो आदत जो लगी होती है वो बिल्कुल चला जाता है, तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है दोबारा। एंड ऑलरेडी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वीडियोस बनाना, कैमरे के सामने आना, इस तरह से बात करना, और अरबी खास करके मैं रात को बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने दोपहर को या शाम, लगभग शाम को ऑलरेडी कोशिश करी थी कि पॉडकास्ट तभी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि रात को सब सो रहे होते हैं तो काफ़ी अजीब लगता है बात करना और ज़्यादा, तो इस वजह से चाहता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइसेस होते हैं, प्लस मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, और वो गर्मी एक्चुअल में वेदर की वजह से नहीं, वेदर ऑब्वियसली बहुत ठंडी है, नर्वसनेस की वजह से बॉडी वार्म हो जाती है बेसिकली, अभी भी होती है मेरे साथ ये सब। काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ फिर भी, क्योंकि बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता, ये अपने आप को मैं बेसिकली फोर्स करता हूँ, और टाइम के साथ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है अगर मैं रेगुलर करता रहता हूँ तो। और क्योंकि मैंने अभी बहुत टाइम से रेगुलरली वीडियोस बनाए ही नहीं है, तो अभी मैं वापस अपने इनिशियल मोड की तरह स्विच हो गया हूँ। जैसा अभी मैंने जस्ट रियलाइज़ किया कि मैं काफ़ी देर तक नीचे देख रहा था अपने लैपटॉप पर, जबकि कैमरे पे देखना चाहिए, तो वीडियो में आपको दिखेगी। तो इस तरह की गलतियां मैं करते रहता हूँ हमेशा, एंड अभी भी मुझे कॉन्शियसली सोचना पड़ रहा है कि कैमरे पे देखो, क्योंकि मुझे इधर उधर देखने की आदत है। इधर मेरा टैबलेट पड़ा हुआ है जहाँ पे मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ अपने कैमरे की, इधर फ़ोन का प्रीव्यू है, फ़ोन भी एज अ सेकेंड एंगल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड देन इधर लैपटॉप में मेरे नोट्स हैं एंड ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है इस वजह से। एंड अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था एक्चुअली, कुछ शॉर्ट्स जो टेक कंज्यूमर चैनल पे जाएंगे, तो वो उस साइड मेरे पीसी पे पड़ी हुई है, इस वजह से मेरे नज़र इधर उधर हो रहे हैं, बट आप समझ सकते हो। मैं बेसिकली इसी तरह से कैजुअल रखना चाहता हूँ जितने भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा। और आई थिंक अगर मुझे आई थिंक बताना चाहिए कि क्यों बंद कर दिया था, तो मेनली दो रीजन्स हैं। एक तो मेरे पास टाइम होता नहीं था एडिट करने के लिए, पर अभी खास करके बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जैसे पॉडकास्ट फटाफट एडिट किए जा सकते हैं। पहले बहुत मैनुअली करना पड़ता था, बहुत टीडियस काम होता है पॉडकास्ट को एडिट करना, अगर आप प्रॉपरली एडिट करना चाहो तो। एंड अभी मैं एडिटिंग स्टाइल भी चेंज करने वाला हूँ पॉडकास्ट का, जिससे ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा फास्ट एडिटिंग हो सके, प्लस अभी बहुत सारे ऐसे AI टूल्स आ गए हैं जिससे फटाफट एडिट हो सकता है। ऑब्वियसली अभी भी मेहनत लगेगी, तो मैं मुझे नहीं पता कि कितने फ्रिक्वेंसी में करूँ। आई थिंक मैं टारगेट करूँगा कि वीकली एक पॉडकास्ट एटलीस्ट हो जाए, बट देखते हैं। और विंटर पे ऑब्वियसली, क्योंकि समर पे रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता, अभी जैसे इतना विंटर पे भी मेरे को जैकेट उतारने का मन कर रहा है क्योंकि गर्मी लग रही है, आई डोंट नो क्यों, बट मेनली नर्वस होने की वजह से बॉडी वार्म होने लगती है, तो ये है। एंड समर में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऊपर से आपको नर्वसनेस की वजह से और ज़्यादा गर्मी फील होती है, तो समर में करना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। नॉर्मल वीडियोस रिकॉर्ड करना भी पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं समर में वीडियोस बनाता हूँ तो प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करके बनाता हूँ ताकि फटाफट बोल के ख़त्म कर सकूँ, और तब भी फैन वैन चल रही होती है, उसके बाद फिर एडिटिंग में नॉइज़ वगैरह रिमूव करना पड़ता है, या ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं नॉइज़ को जितना हो सके कम करने के लिए। बट नॉइज़ रिडक्शन से प्रॉब्लम ये है कि जैसे सुबह के टाइम पे अगर मैं रिकॉर्ड करूँ तो उस समय नॉइज़ रिडक्शन सॉफ्टवेयर वगैरह लगा के कुछ हद तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप जितनी ज़्यादा नॉइसेस रिमूव करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी ऑडियो क्वालिटी ख़राब होती जाती है, और ये ट्रेडिशनल नॉइस रिमूवल टूल से भी होती थी, एंड अभी जो AI रिमूवल टूल्स हैं मतलब काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं और पहले से बेटर है, बट अभी भी इसमें भी सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अगर आप नॉइस रिमूव यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि आप कम्प्लीटली सेम क्वालिटी ऑफ वॉइस रखते हुए नॉइस रिमूव करना बेसिकली पॉसिबल नहीं होता। तो बेहतर बेहतर यही होगा कि आप जितना हो सके नॉइस अवॉइड करें। तो इसीलिए मैं शाम को या रात को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। एंड सरप्राइजिंगली मैं गांव में रहने की वजह से नॉर्मली मेरा परसेप्शन ये होता है कि एनिमल्स का साउंड ज़्यादा रिकॉर्ड होगा, उन लोग ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, जैसे बकरियाँ होगी, गाय वगैरह, कुत्ते वगैरह। बट मेरे केस में बच्चे एक्चुअल में ज़्यादा साउंड करते हैं, उनका ही ज़्यादा नॉइसेस रहता है और अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह ट्राई कर रखे हैं एंड अभी मैंने एक्टिवेट नहीं कर रखा है। ओके सॉरी अगर साउंड आया होगा, तो मैंने हाथ लगा दिया था माइक्रोफोन पे। तो अभी मैंने सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करके नहीं रखा है, बट कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे नॉइस को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो मैं किसी दिन एक पायलट एपिसोड रिकॉर्ड कर सकता हूँ टेस्ट के लिए एंड देखते हैं क्या होता है। अगर मॉर्निंग में भी रिकॉर्ड करना पॉसिबल होगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, ताकि ज़्यादा एपिसोड्स रिकॉर्ड कर पाऊँ या एटलीस्ट अब कंसिस्टेंट रह पाऊँ, जो कि पहले नहीं रह पाया था मैं। एक रीज़न वही था कि एडिटिंग बहुत दिक्कत होती थी। दूसरा, पहले मैं टीममेट्स के साथ कर रहा था काम, तो मल्टीपल लोग थे, मैं खुद एडिट नहीं कर रहा था पॉडकास्ट, तो ये भी एक रीज़न थी। मेरे पास टाइम था ही नहीं उसको एडिट करने के लिए, तब कुछ कोई और कर रहे थे जिसकी वजह से आपको पॉडकास्ट मिल रही थी। एंड देन अभी मैं फिर से सोलो रन कर रहा हूँ, तो अभी सारी चीज़ें अकेले मैनेज कर रहा हूँ दोबारा, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा बहुत ओवरवेलमिंग काम है मेरे पास। इतना ज़्यादा काम है कि फिर देखने के बाद लगता है कि छोड़ो यार तो नहीं, एक्चुअली कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत सारे काम देखकर कंफ्यूजन होती है, सोचते रहता हूँ कि कैसे करना है, और इसी चक्कर में टाइम निकल जाता है। बहुत मुश्किल से ये वीडियो के लिए भी अपने आप को रेडी करा कि नहीं देखते हैं करते हैं और नहीं डाल सकते इसके लिए, तो बहुत मुश्किल से इसके लिए रेडी करा है। कुछ नोट्स लिखे हैं, जिसको ये भी नोट्स भी इसलिए रखे हैं कि अगर मैं बोल ही ना पाऊँ तो क्या करूँगा। वैसे मैं नॉर्मली पॉडकास्ट के थ्रू ये चाहता हूँ कि नॉर्मली ऐसे आके बैठूँ और मेरे पास या तो कुछ बुलेट पॉइंट्स हो या जेन्युइनली माइंड में जो भी आए उसके उस उनको लेके बातें करूँ। अभी तक मैंने बाय द वे वही करा है कंटिन्यू, आई थिंक रिकॉर्डिंग में तो 8 मिनट्स हो चुके हैं। आई डोंट नो वीडियो में एक्चुअल में कितना मिनट आपको मिलेगा, क्योंकि मैं साइलेंट वगैरह काफ़ी हद तक रिमूव कर दूँगा, साइलेंट पार्ट वगैरह या रिपीटेड पार्ट वगैरह और मिस्टेक्स वो सब हाइड रिमूव कर दूँगा एडिटिंग में। तो आपको पता नहीं कितना टाइम के लिए मिलेगा, बट इतने देर तक मैं बोल पाया हूँ अभी तक माइंड से। और मैं यही चीज़ को एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ, कन्वर्सेशनल बनना चाहता हूँ। अगर आप मेरे तरह इंट्रोवर्ट नेचर वाले हो बेसिकली, तो आपको पता होगा कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है मेरी, मेरे को और इम्प्रूव करना है एंड कंटिन्यूसली कन्वर्सेशंस करने हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है। सेम इंग्लिश पॉडकास्ट भी मैंने उसी के लिए स्टार्ट किया था एंड उसको भी प्रोबेबली कंटिन्यू करूँगा मैं, एंड देखते हैं वो कैसे होता है। एंड सेम चीज़ वहाँ पे भी ट्राई करूँगा कि सिर्फ बुलेट पॉइंट्स होंगे या फिर ऑन टॉप ऑफ हेड जो भी मन में आएगा उसको बोलते हुए पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाला हूँ। आई थिंक मेरे माइंड में जितनी थी चीज़ें थी मैंने बता दी, तो अब मेरे को अपने बुलेट पॉइंट्स पे फोकस करने पड़ेंगे जो मैं नया कर रखे हैं अपने लैपटॉप पे। ओके, पहला पॉइंट पॉडकास्ट के बारे में। तो अब मैंने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, आपको पता होगा बहुत पहले स्टार्ट करा था एंड देन एक्चुअली मैं कंटिन्यू नहीं करा, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया बेसिकली। पर मैंने बहुत लोगों को एडवाइस करा था उस टाइम पे कि पॉडकास्ट शुरू कर लो, ये फ्यूचर में इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, बूम करने वाला है, एंड आई वॉज राइट अबाउट दैट। बहुत सारे पॉडकास्ट अभी हैं ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों की पॉडकास्ट जो है बहुत पॉपुलर हो गई है और अभी लोग और नए नए पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं। जबकि अगर जब मैंने कहा था तभी से जो कर रहे थे उनमें से काफ़ी लोग अभी बहुत पॉपुलर पॉडकास्टर्स हैं। एंड अगर मेरी बात करें तो ऑब्वियसली आई फेल्ड इन दैट, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से पॉडकास्ट करी थी जब मैंने बोला था तब से, तो उनका पॉडकास्ट अभी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो चुका है। मेरे ईमेल लिस्ट वगैरह में हैं कुछ लोग जिनसे मैं बातें करता हूँ, तो वहाँ से पता चलता है, सोशल मीडिया से पता चलता है। तो अगर मे बी कंटिन्यू रखता तो आई थिंक मे बी शायद हो जाता ग्रो काफ़ी हद तक। खैर वो पुरानी बात हो गई, बट पॉइंट ये है कि मैं राइट था उसके बारे में, ये मुझे बताना था। एंड कभी कभी अच्छा लगता है इस तरह से प्रेडिक्शन करना। तो ये मेरी प्रेडिक्शन थी कि पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी इंडिया में, एंड वो हुई है। एंड आई थिंक अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, और अभी भी बहुत सारे पॉडकास्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल के लिए टेक रिलेटेड पॉडकास्ट मैंने को आज तक एक भी नहीं देखी है। मैंने जितने देखे हैं जियो पॉलिटिकल्स हैं, कॉमेडी पॉडकास्ट है, इंटरव्यू वाले जो होते हैं नॉर्मली वो बहुत सारे हैं। हाँ ये तीन चार ही कैटेगरीज़ के पॉडकास्ट मैंने देखे हैं अभी तक फ़िलहाल। और भी होंगे, ऑब्वियसली होंगे, बट मैंने अभी तक मैं ये तीन चार कैटेगरी के ही नोटिस करी हैं। आई थिंक टेक न्यूज में ज़्यादा पॉडकास्ट है नहीं। मैं करने वाला हूँ वेदर टेक कंज्यूमर। आई थिंक मैं टेक रिलेटेड टॉपिक्स भी इसी पॉडकास्ट के थ्रू बात करूँगा, जिसके क्लिप्स आपको बीएम क्लिप्स या टेक कंज्यूमर पे मिलेंगे एज पॉडकास्ट में भी प्रोबेबली। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि मैं सेपरेटली एक टेक कंज्यूमर पॉडकास्ट अभी स्टार्ट करूँगा, देखता हूँ। पहले इसी में कंटिन्यू करके कुछ बीच बीच में टेक रिलेटेड चीज़ें बातें करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पॉइंट में ये भी है, ये गैलेक्सी बड्स 2 प्रो जो मैंने रिसेंट रिपब्लिक डे सेल वाली जो अमेजन की सेल थी वहाँ पे खरीदी थी, काफ़ी सस्ते में मिल गई, तो इसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, टेक कंज्यूमर चैनल के बारे में मुझे बहुत सारी बातें करनी है कि क्यों है, क्या डिफरेंट है वगैरह वगैरह, बहुत सारे उसके पीछे की फ़िलोसफी क्या है उस चैनल की। तो मैंने ऐसा ही बस टेक चैनल खोलेंगे करते हैं करके नहीं कराए, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, तो वो भी शेयर करूँगा प्रॉबेबली। एंड आई डोंट नो इस एपिसोड में या किसी और एपिसोड में डेडिकेटेडली, आई डोंट नो, बट देखते हैं क्या होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट टू एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड इन दिस पॉडकास्ट। यही मैं जब अभी आई थिंक उसी के बारे में बात कर रहा था मैं, तो मैं मिक्स करने वाला हूँ। एक चीज़ मैंने मतलब बहुत गलती करी थी इस चैनल के साथ या इस पॉडकास्ट के साथ, एक कि एक होता है ना आपके पास, आई थिंक मैं थोड़े बहुत पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। ओके, मैं शुरू से बताता हूँ, इसके बाद वाली टॉपिक जो है वो मिस्टेक्स के बारे में ही है जो मैंने इस चैनल के साथ करी, जिस चैनल पे आप ये पॉडकास्ट देख रहे होगे यूट्यूब पे। पॉडकास्ट तो खैर मिस्टेक, पॉडकास्ट में कोई मिस्टेक नहीं हुई, बस मैंने बंद कर दिया था। यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ अभी इस वक्त मैं, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल में अपलोड होने वाले हैं। तो इस चैनल पे मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक करी थी, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। पहली वाली मिस्टेक नहीं थी, बट ओरिजिन बता रहा हूँ कि स्टार्ट मैंने इस चैनल को करी थी एक टेक चैनल के थ्रू, एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस डालता था बेसिकली फ़ोन की, जिसमें मैं ट्यूटोरियल्स देता था कि कुछ चीज़ें कैसे करनी है। अपने एयरफोन लेके बगान वगैरह पे जाता था काफ़ी दूर, ताकि नॉइस रिकॉर्ड ना हो, आपको चिड़िया के साउंड मिलेगी उन वीडियोज़ में। तो वहाँ पर जाके मैं रिकॉर्ड करता था, बाहर कहने का मतलब काफ़ी दूर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस होते थे, जिसमें मोबाइल रिलेटेड ट्यूटोरियल्स होते थे, क्योंकि मैं वही अपलोड कर सकता था उस वक्त। एंड विथ टाइम मैंने फिर उसमें टेक रिलेटेड, मेरे को बेसिकली रियलाइज़ हुआ कि मैं टेक रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा बना नहीं पाऊँगा, खास करके प्रोडक्ट रिलेटेड, क्योंकि मैं कुछ खरीद नहीं रहा था, ना कुछ खरीद सकता था उस वक्त, कुछ अफोर्ड कर सकता था, स्टूडेंट था ऑब्वियसली उस वक्त, एंड ऑलरेडी काफ़ी खर्चे थे पढ़ाई को लेकर। तो उस वक्त मैं ख़रीद नहीं सकता था कोई भी टेक प्रोडक्ट, एंड हाउ टू वीडियोस कितना ही बना ले, इस टाइप का सिचुएशन था। और ये भी नहीं कि मेरे पास कंप्यूटर वगैरह भी नहीं थे उस वक्त, तो ना ही लैपटॉप वगैरह, आई थिंक लैपटॉप भी नहीं थे, लैपटॉप भी नहीं थे। तो मेरे पास ऐसा कोई डिवाइसेस नहीं था जिसके बारे में भी मैं बहुत सारे हाउ टू वीडियोज़ बनाऊँ, तो सिर्फ फ़ोन थी, और सिर्फ फ़ोन पर पता नहीं कितने हाउ टू वीडियोज़ बनाता, तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, एंड इस वजह से मैं थोड़ा सा डिस्करेज हो गया था। प्लस मैं दूसरी चीज़ें भी सीख रहा था, दूसरी चीज़ें समझ में आ रही थी, जैसे कोडिंग वगैरह कर रहा था, वेबसाइट्स बना रहा था, ब्लॉगिंग कर रहा था। तो फिर मैंने इवेंचुअली डिसाइड किया कि ओके, इसको एक टेक चैनल नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे भी मैं टेक रिलेटेड वीडियोज़ बना नहीं पाऊँगा, वही प्रोडक्ट वगैरह की बात कर रहा हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता था उस वक्त। तो इसलिए मैंने चैनल को पर्सनल ब्रांडिंग पर स्विच करा, तो मैंने फिर अपना नाम डाल दिया ऑब्वियसली चैनल के नाम पर, एंड फिर उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग मार्केटिंग ये सबसे रिलेटेड वीडियोस डालना शुरू कर दिए थे। जब मैंने मतलब इन टॉपिक्स पे स्विच करा ना, वर्डप्रेस ब्लॉगिंग, अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वगैरह, तो फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उसमें ज़्यादा पैसे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे आ रहे थे। एक तो अफिलिएट मार्केटिंग से ऑब्वियसली पैसे आ रहे थे, अफिलिएट लिंक्स वगैरह से, एंड एड रेवेन्यू भी यूट्यूब का जो था वो RPM, उसको RPM कहते हैं बेसिकली, पर 1000 व्यूज आपको कितने पैसे मिल रही है वो RPM होता है, अगर आपको नहीं पता तो वो भी काफ़ी हाई थी कंपेरेटिवली मेरे टेक वीडियोज़ से। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे टेक वीडियोज़ जो है वो हाउ टू वीडियोज़ थे। आई थिंक प्रोडक्ट बेस्ड अगर यूट्यूब वीडियोज़ बनाओगे, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप वगैरह, तो आई थिंक RPM शायद वहाँ पर ज़्यादा हाई होगी। मैंने अभी कंपेयर नहीं किया है मेरे टेक कंज्यूमर वाले चैनल से, बट आई थिंक शायद वहाँ पे हाई होगी, मुझे नहीं पता। बट अर्निंग के हिसाब से अभी भी ये चैनल ज़्यादा अर्न करती है, क्योंकि यहाँ पे मैं अफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ, और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत बहुत महंगे होते हैं, प्लस रिकरिंग कमीशंस होते हैं वगैरह वगैरह, तो जिसके उसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग होती है। एंड ये जो प्रोसेस थी, फिर मेरे साथ ये हुआ कि मैंने पहली बार उतना पैसा देखा, ऑब्वियसली काफ़ी ईजिली पैसे मिल रहे थे, काफ़ी पैसा ईजिली मैं पैसे अर्न कर रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि पैसे की तरफ फोकस ज़्यादा चला गया मेरा, एंड पर्सनल ब्रांडिंग को मैं भूल ही गया था। तो अनजाने में ही सही, लेकिन मैं फिर से नीचिंग डाउन करने लगा था, यानी कि एक नीच पे फोकस करने लगा था, जो कि आप कह सकते हो डिजिटल मार्केटिंग या वर्डप्रेस या ब्लॉगिंग, इस टाइप की नीच को आप कंसिडर कर सकते हो, ऑनलाइन मनी मेकिंग भी कह सकते हैं। तो इन टॉपिक्स पे मैं फोकस करने लगा था, जबकि मेरा पूरा एम इस चैनल के लिए था कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग करूं और अपने जर्नी को रिकॉर्ड करूं बेसिकली। तो इसलिए अगर आप बैनर भी देखोगे चैनल का, पता नहीं अभी है या नहीं, या कौन सा बैनर है, मेरे को वो भी ठीक से याद है नहीं, बट अगर आप बैनर देखोगे तो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था टैगलाइन, फॉलो माई जर्नी टू इम्प्रूव योर ओन, ऐसा कुछ। तो बेसिकली मैं अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट करना चाहता था इस चैनल पर, कि जो भी चीज़ नया कर रहा हूँ, जो भी चीज़ मेरे को बात करने की मन कर रही है, आके मैं बात करूँगा इस तरह से, एंड जो भी नए चीज़ें करूँगा उनके ऊपर वीडियोस बनाऊँगा, इस टाइप का डिसीज़न था। तो मैं चाहता था इस चैनल पे लोग मुझे फॉलो करें, ना कि किसी टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को। और मैंने वही गलती कर दी कि मैंने वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, ये सब पे कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड हो गया, जिससे लोगों को लगने लगा कि अब यही टॉपिक है मेरा इस चैनल का, अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वगैरह, जो कि ऑब्वियसली था नहीं। तो वो एक मिस्टेक हुई कि मैं पूरी तरह से निश पे चला गया था, और वो अनजाने में ही हुआ क्योंकि पैसे आ रहे थे, बट मैं ये चाहता नहीं था कि हो। तो अगेन मैंने अभी फिर से डिसाइड करा है कि नहीं, जो करना था वही, उसी पे वापस जाते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे। एंड मैं चाहता हूँ लोग मुझे फॉलो करें, ना कि इस चैनल पे किस टॉपिक पे वीडियोस आ रहे हैं, या किस निश के वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा हैं वगैरह वगैरह। मैं चाहता हूँ मेरे ओपिनियंस के लोग मुझे फॉलो करें, या मैं जो कर रहा हूँ उस पर अगर उनको इंटरेस्ट है, या हम सिमिलर इंटरेस्ट शेयर करते हैं, ये सब रीजंस की वजह से, या फिर मे बी कुछ चीज़ों से कोई मुझसे रिलेट करता है। आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ लोग जिसके लिए मुझे फॉलो करें बेसिकली, टॉपिक की वजह से नहीं। टॉपिक चेंज होते रहेगी क्योंकि मैं चेंज होता रहता हूँ। जैसे मैंने बताया, मैंने टेक हाउ टू वीडियो से स्टार्ट करा था, फिर ब्लॉगिंग के बारे में बात करने लगा, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करने लगा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करने लगा, SEO के बारे में भी आई थिंक बीच में एक दो वीडियो बना दी थी। तो कहने का मतलब, मेरा इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, मैं चेंज होते रहता हूँ, और ये चैनल भी उसी तरह हमेशा चेंज होता रहेगा, एक तरह से मेरी ही ग्रोथ का हिस्सा रहेगा, मेरे लाइफ का ही एक हिस्सा रहेगा। तो ये मेरा गोल है, और इवेंचुअली आपको इस चैनल पे वही दिखना चाहिए, मेरा ही जर्नी एक तरह से दिखना चाहिए, कि मैं कहाँ से आया, कहाँ गया वगैरह वगैरह। तो प्लान वही है कि मैं उसी पे फोकस करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी इस चैनल पे एक भी टेक वीडियोस आई थिंक नहीं है, मैंने सब प्राइवेट कर दिया है आई थिंक। तो वो वही, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं नीच करने के लिए चला गया था, वर्डप्रेस वगैरह पे फोकस करने के लिए चला गया था पैसे की वजह से, हालांकि मेरे को छोड़ देना चाहिए था वो वीडियोज़ जैसे कि तैसे। आई थिंक मैंने डिलीट ही कर दी बहुत सारे वीडियोज़, जो कि और भी बड़ी गलती थी, प्राइवेट या अनलिस्ट करके रखना चाहिए था, तो वो भी एक बड़ी मिस्टेक थी। तो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज़ हैं नहीं अभी फ़िलहाल मेरे पास, और ना ही बैकअप में, क्योंकि स्टोरेज भी नहीं होती थी उस वक्त, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड अब स्विच, आप क्या देखोगे कि बीच बीच में ऐसे टेक वीडियोस भी आएंगे, जैसे टेक में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने टेक चैनल अलग से स्टार्ट करा ना, उसमें भी बहुत सारे रीजन्स है जैसे कि मैंने बताया, पर एक रीज़न ये भी है कि मुझे टेक हमेशा से पसंद था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग भी टेक वीडियोज़ से करी थी। बस उस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। और अभी क्या हुई, जब मैं यहाँ पे वर्डप्रेस वगैरह पे वीडियो बना रहा था इस चैनल पे, तब क्या हुआ, तब मैं बहुत सारे टेक रिलेटेड चीज़ें खरीदने लगा क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत आ रहे थे और बहुत मन करता था कि उनके ऊपर वीडियो बनाओ। बट निश पे फोकस होने की वजह से मैं इस समय पर वीडियो डालना नहीं चाहता था, तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए ही नहीं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे पीसी असेंबल करी खुद से, पीसी बिल्डिंग करी, उसके वीडियोस नहीं आए। प्रिंटर आई थिंक मैंने टेक कंज्यूमर में डाली, मेरे को यहाँ पे दिखा इसलिए आ गया माइंड में। पर वैसे मैंने बहुत सारे टेक रिलेटेड चीज़ें खरीदी बेसिकली, एंड उनके ऊपर आपको वीडियोस मिले ही नहीं। पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ, बेसिकली मैं टेक प्रोडक्ट सुन रहा हूँ। बहुत सारे होंगे आसपास भी जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाना चाहता था, जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था, बट कभी करी ही नहीं क्योंकि यहाँ पे मैं एक निश पे फोकस्ड हो गया था जो कि करना नहीं चाहता था मेरे को। मेरे को पर्सनल ब्रांडिंग पे ही फोकस्ड रहना चाहिए था। तो मेरे को टेक में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जैसे कि मैंने बताया, तो मैं टेक रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाना चाहता था। तो अभी भी आप देखोगे, और क्योंकि और बाय द वे ऐसा नहीं है कि आप टेक कंज्यूमर को छोड़ के यहाँ पे टेक रिलेटेड वीडियोस आएंगे, नहीं, बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे चीज़ें मैंने सोची हुई है। तो टेक कंज्यूमर वहाँ पे अलग से जो चैनल है वो सही है क्योंकि उसके अलग प्लान्स हैं। बट यहाँ पे भी अगर मेरे को मन करेगा बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैमरे के बारे में बात करना चाहता हूँ एंड मे बी ये माइक्रोफोन है ना, तो मैं करना चाहता हूँ बेसिकली। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो यूट्यूब वगैरह करना चाहते हैं या वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर मैं कैमरे के ऊपर वीडियो बना दी फ्रॉम अ क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव, नॉट एज अ टेक यूट्यूबर, एंड सेम थिंग विथ माइक्रोफोन वगैरह। तो वो चीज़ें करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टैबलेट है, टैबलेट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई एक्चुअली, वो टेक कंज्यूमर में है, ठीक है। एंड लाइटिंग सेटअप वगैरह, यूट्यूब बेसिक यूट्यूब सेटअप, और मेरे इससे पहले बहुत सारे जुगाड़ वाले यूट्यूब सेटअप्स थे, उनके बारे में भी बात करना चाहता था, कभी करी नहीं। तो वो सब वीडियोज़ मे बी यहाँ पे इस चैनल पे आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड कोई टेक प्रोडक्ट अगर मैं ख़रीदता हूँ, ठीक है, तो टेक कंज्यूमर पे उसकी वीडियो आएगी, प्लस इस चैनल पे आपको उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिल सकता है कि उस टेक का मेरे प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या मैं उसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और टेक चैनल पे आपको एज अ कंज्यूमर, टेक का एक कंज्यूमर की तरह पर्सपेक्टिव मिलेगा। वहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स पे थोड़ी सी भी बात होगी बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कैमरा, ठीक है, तो अगर मैं टेक चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ तो उसके बहुत सारे टेक्निकल स्पेक्स वगैरह जो हैं उनके बारे में बात करूँगा, सिमिलर टेक्निकल स्पेक्स वाले दूसरे कैमरे से कंपेयर करूँगा वगैरह वगैरह। बट अगर इस चैनल पे डालूँगा तो मैं इन चीज़ों पे बात करूँगा कि वो किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, क्या डाउन साइड्स हैं, क्या अपसाइड्स हैं। टेक्निकल डिटेल्स की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ कि उनके कितने सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, कितने सारे नुकसान हैं हो सकते हैं, क्या बेटर ऑप्शंस हैं, क्या ये वर्थ है आपके करियर के लिए या जो भी है आपके काम के लिए वगैरह वगैरह। थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा यहाँ पे। आप एज अ क्रिए यहाँ पे मैं एज अ क्रिएटर बात करूँगा कैमरे के बारे में, और वहाँ पे एक एज अ टेक जर्नलिस्ट या टेक यूट्यूबर की तरह बात करूँगा। तो ये डिफरेंसेस होंगे, बट टॉपिक मे भी दोनों चैनल पे आएंगे, हो सकता है। और जैसे मेरे को मन करेगा मैं बात करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये गैलेक्सी बड्स 2 प्रो, आई डोंट नो मेरे को इस पर टेक कंज्यूमर पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, बट मेरे पास इसके लिए भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। आई थिंक मैंने 25 मिनट्स की रिकॉर्ड कर लिया है, मुझे आई थिंक स्टॉप करके फिर दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, आई थिंक, देखते हैं। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है इस कैमरे में, आई थिंक फ़ोन में करने की ज़रूरत है, तो इसलिए फ़ोन ओवर हीट हो जाती है। ओके, गैलेक्सी बड्स 2 के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर मैं क्यों बता रहा था, ये मैंने खरीदी है ANC को टेस्ट करने के लिए। ऐसा मेरे को अभी ईयरफोन या ईयरबड्स की कोई ज़रूरत थी नहीं खास करके, खरीदने का प्लान डेफिनेटली था बट ऐसा कोई अर्जेंट ज़रूरत थी नहीं मेरे को। ये मैंने खरीदी क्योंकि मेरे को ANC टेस्ट करना था मोस्टली, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को टेक में इंटरेस्ट है, अब मैं काफ़ी टाइम से सुनते आ रहा हूँ ANC, बट मैंने अभी तक ट्राई किया नहीं था। तो मेरे को बहुत मन था कि ANC ट्राई करेंगे, एंड ये मेरे विश लिस्ट में था, प्रायोरिटी लिस्ट करके एक है वो। अब फॉर एग्जांपल ये इसके बारे में भी मैंने कभी वीडियो अपलोड नहीं करी है, बट मेरे परचेस डिसीजंस के लिए मैंने कुछ सीखा है क्योंकि फ्यूचर में पास्ट में मैंने बहुत पैसे बर्बाद करे हैं, तो कुछ चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करी है, कुछ चीज़ें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करी है, उसको मैं एक लिस्ट है बेसिकली परचेस विथ प्रायोरिटी करके, इसके बारे में कभी बात करेंगे। तो उस लिस्ट में मेरे विश लिस्ट में ये थी प्रोडक्ट ANC वाली कोई ईयरबड्स, कोई भी ईयरबड्स, ये जरूरी नहीं कि सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो, तो बस वो थी। एंड इस सेल पे मेरे को बहुत सस्ते पे ये फ्लेक्सिबल लेवल की मिल रही थी। इसका जो लॉन्च प्राइस है गैलेक्सी बड्स 2 प्रो, आई थिंक 16-17 thousand का होगा, आई डोंट नो, अभी मेरे को याद है नहीं, बट लगभग उतना ही फ्लेक्सिबल ग्रेड था बेसिकली। एंड अभी मेरे को ये 6 thousand के आसपास पे मिल गया, जो कि काफ़ी सस्ते, आई थिंक बजट ऑप्शन ही कहेंगे या मिड रेंज ऑप्शन कहेंगे। काफ़ी अच्छा ईयरबड्स तो है, बट मेरे को, मैंने ANC के लिए खरीदा था, ये बताना चाहता, और मेरे को लगा था कि मैं ANC से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँगा। बहुत सारे रीजन्स थे, जैसे कुछ ANC मेरे को इसलिए भी चाहिए था क्योंकि मैं कुछ क्रिंज TV शोज के आवाज़ नहीं सुनना चाहता था, तो उसके लिए भी मैं ANC लेना चाहता था ताकि वो नॉइसेस अवॉइड कर सकूँ TV वगैरह के, तो वो भी एक रीज़न थे। प्लस मेरे पास सैमसंग के डिवाइसेस हैं लगभग सारे, तो एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा, इसलिए मैंने सैमसंग का चूज़ करा। वरना मेरे पास ये सोनी का लिंक बर्ड्स एस, आई थिंक नाम है, सोनी लिंक बर्ड्स एस, वो रेडार में था मेरे, बोस क्वाइट कंफर्ट वो मेरे रेडार में था, तो बहुत सारे चॉइसेस ऑलरेडी मैंने मन में बना रखे थे कि लेना है करके, बट मैंने गैलेक्सी लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सैमसंग का ऑलरेडी मल्टीपल डिवाइसेस है इस वजह से। तो ऐसा कोई खास रीज़न नहीं था सैमसंग चुनने का, ठीक है, सिर्फ इकोसिस्टम वाला रीज़न था। एंड ये पहली बार फ्लैगशिप प्रोडक्ट भी है बाय द वे, ये फ्लैगशिप ग्रेड ईयरबड्स हैं, पुरानी थोड़ी बट फ्लैगशिप ग्रेड्स हैं, जो कि ट्राई करना था, बट मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी फुल प्राइस में फ्लैगशिप ग्रेड वाला ईयरबड खरीदता। आई थिंक एक्स्ट्रा खर्चा है बिना मतलब का, तो सस्ते में मिल रहा था इसलिए ले लिया। पॉइंट टू बी मतलब पॉइंट ये देना चाहता हूँ मैं, काफ़ी सस्ते में मिल गया इसलिए मैंने ले लिया, ओनली 6K के अराउंड पड़ा मेरे को। कार्ड डिस्काउंट SBI क्रेडिट कार्ड का था, प्लस कूपन कोड था कुछ, उसकी वजह से इतने सस्ते में मिल गया मेरे को, तो इसलिए मैंने ले लिया। ओ हाँ, बाय द वे, मैं ANC ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और एम्बियंट कोड को मैंने ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर दिया था, मैंने उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था, एंड मेरे दिमाग में वो था ही नहीं कि एम्बियंट मोड के लिए लेना है वगैरह। बट सरप्राइजिंगली मेरे को एम्बियंट मोड ज़्यादा पसंद आया है ANC से। ANC यस बहुत यूज़फुल है, बट ईयरबड्स का जो फिट है ना, वो ऑलरेडी पेसिव नॉइस कैंसिलेशन भी काफ़ी अच्छा कर लेता है। ऑब्वियसली मैं डिटेल टेक रिव्यू में आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं ऑफकोर्स, बट ANC से ज़्यादा मुझे लगा नहीं था ये होगा, बट ANC से ज़्यादा यूज़फुल मेरे लिए एम्बियंट मोड रहा है, मैं वो ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे टेक रिलेटेड वीडियो में, यहाँ पे नहीं। ओके, द आइडिया बिहाइंड टेक कंज्यूमर, ये मेरा नेक्स्ट आइडिया है बात करने के लिए, तो आई थिंक 30 मिनट्स मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे स्टॉप करके फिर दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, पार्ट टू, अब इस पे बात करते हैं आइडिया बिहाइंड टेक कंज्यूमर। तो कुछ आइडियाज़ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया ऑब्वियसली, वही कि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से वीडियोज़ बनाने हैं मेरे को वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ एग्ज़ाम्पल्स से समझाता हूँ। मैं जो टेक वीडियोस डालूँगा वो यूजली एक रियल लाइफ कंज्यूमर या जनरल कंज्यूमर बेस्ड वीडियोस होंगे, तो ऐसे प्रोडक्ट्स मोस्टली आपको देखने को कभी नहीं मिलेंगे, या मे बी मिलेंगे कभी बट मोस्टली नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि लेटेस्ट प्रोडक्ट हुआ या फ्लैगशिप लेवल प्रोडक्ट हुआ, वो सब मेरे चैनल पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग, जनरल लोग जो होते हैं उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। एंड सेम चीज़ मेरे केस में भी है, मैं मुझे टेक बहुत पसंद है यस, बट बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, तो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे बर्बाद नहीं करने वाला कभी भी। मैं बहुत सोच समझ के परचेज करता हूँ अभी, पहले ऑब्वियसली मैंने बहुत गलती करी है, बट अभी बहुत सोच समझ के परचेज करता हूँ, और एक स्मार्ट कंज्यूमर कह सकते हो मेरे को, थोड़ा अजीब लग रहा है कहने के लिए, बट यस, काफ़ी स्मार्टली डिसाइड करता हूँ, काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली डिसाइड करने के, और तभी मैं डिसाइड करता हूँ कि कोई प्रोडक्ट लेनी है या नहीं। एंड मैं उसी तरह के लोगों को बेसिकली टारगेट करना चाहता हूँ उस चैनल के थ्रू, टेक कंज्यूमर, इसलिए नाम भी कंज्यूमर है बाय द वे। नहीं, मेरे को वहाँ पे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक के बारे में बात नहीं करनी, मेरे को बात करनी है उन टेक का, उन टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों का जो एक्चुअली मैं डेली लाइफ में लोगों को काम आए। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा अभी जैसे कि रिलीज़ हुई है, तो लगभग सारे चैनल पे आपको उसके ऊपर वीडियोस मिलेंगी, बट मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तो मैं अभी अफोर्ड भी नहीं कर सकता, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर मैं अफोर्ड भी कर सकता तो भी मेरे को, मैं उस पर कोई वीडियोस नहीं डालता अभी इस वक्त, बनाता ही नहीं। एंड मे बी अगर उन लोग मेरे को फ्री में भेज देते प्रोडक्ट तो कंसिडर करता, बट तब भी वो मेरे प्रायोरिटी में नहीं होता। पॉइंट ये है मेरी। हाँ, अगर S24 होता तो मे बी, क्योंकि वो बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं और यूज़ कर पाएंगे, एक्चुअली में अफोर्ड कर पाएंगे, उस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। बट जो ज़्यादातर लोगों के लिए मतलब यूज़फुल होने वाला ही नहीं, जो ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे, उनके बारे में आई थिंक आपको उन प्रोडक्ट के बारे में आपको वीडियोस प्रॉब्ली नहीं देखने को मिलेगी। और किसी भी प्रोडक्ट के लिए मैं मतलब फर्स्ट रिव्यू अपलोड कर दी या जल्दी वीडियो बना के डाल दी, वो वाली अप्रोच आपको देखने को नहीं मिलेगी टेक कंज्यूमर चैनल पे। और मेरे लगभग सारे प्रोडक्ट रिव्यूज़ जितने भी आप देखोगे उस चैनल पे, वो एटलीस्ट मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ यूज़ के बाद ही देखने को मिलेगी कोई भी प्रोडक्ट। एंड मेरा जो एक बेंचमार्क कह सकते हो या एक गोल कह सकते हो, वो है 6 मंथ। एटलीस्ट मैं 6 मंथ कोई प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा एंड उसके बाद ही आपको रिव्यू देखने को मिलेगी। और अगेन पॉइंट टू बी नोटेड कि कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से तो ऑब्वियसली ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो एक्चुअली में मैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करूँगा उस 6 मंथ में। ऐसे नहीं कि 6 मंथ पे 1-2 घंटे के लिए यूज़ किया और फिर रख दिया, उसके बाद फिर डेली डेली इस तरह से करके देखा, फिर उसके बाद आपको आके एक रिव्यू वीडियो बना दी। नहीं, उन प्रोडक्ट्स को बेसिकली मैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करूँगा खुद के लिए, एंड देन आपको रिव्यूज़ मिलेगी। एंड अगर मैं कुछ टीम्स हायर करता हूँ या कोई और लोग वीडियोस में इन्वॉल्व होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो सेम उनका भी यही काम रहेगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो अपने डेली लाइफ में एटलीस्ट 6 मंथ के लिए, देन आप उसके लिए रिव्यू बनाने के लिए रेडी हो। अदरवाइज़ एक जनरल इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है मे बी, बट रिव्यूज़ 6 मंथ एटलीस्ट यूज़ करने के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। और ऑब्वियसली वो डिवाइस भी डिफरेंट डिवाइस के लिए डिफरेंट टाइमलाइन होगी, जैसे हर चीज़ के लिए 6 मंथ आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल ये माइक के बारे में आपको हर हर चीज़ें जानने के लिए 6 मंथ नहीं चाहिए, सेम गैलेक्सी बड्स 2 प्रो के लिए आपको 6 मंथ नहीं चाहिए, बट कुछ डिवाइसेस ऐसे होंगे जिसके लिए आपको 6 मंथ चाहिए होंगे एक्चुअल में। जैसे ये कैमरा हो गया, ज़्यादातर स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स वगैरह हो गए, तो वो लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद ही उसका प्रॉपर रिव्यू दिया जा सकता है उसे। उसमें मतलब मैं सबसे पहले वीडियो डालूंगा वगैरह एटीट्यूड काम नहीं करने वाला। तो ज़्यादातर हमारे जो वीडियोस होंगे वो उसी तरह के होंगे, जो काफ़ी टाइम के बाद आएगी, आपको एक प्रॉपर रिव्यू होगा, बहुत एक प्रॉपर यूज़ के बाद प्रोडक्ट को हम लोग खुद यूज़ करने वाले हैं, अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और तभी आपको वीडियोस मिलेगी। और ऐसे प्रोडक्ट के वीडियोस नहीं आएंगे जो हम खुद यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये हेडफोन मैंने बहुत टाइम पहले से ख़रीदी हुई है, AKG की 52, एंड मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह है ना, बट मैं अभी तक मैंने वीडियो डाली नहीं है। ऑलमोस्ट आई थिंक कितने महीने हो गए पता नहीं, बट मैं देखना चाहता हूँ। मेरे पास इसके पहले बोट के हेडफोन्स थे, तो कुछ महीने बाद उनका कुछ हाल डिफरेंट ही था, तो मैं वो देखना चाहता था इस हेडफोन के साथ भी कि क्या मुझे इस हेडफोन में भी सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी ये चीज़ें, तो उसके बाद मैं अपलोड कर सकता हूँ अगर मेरे को लगा कि ओके अब मैंने इनफ यूज़ कर लिया है और इसके बारे में लगभग सब कुछ जानता हूँ, तब जाके वीडियो बनाऊँगा। तो वो सेम केस है, इसके इसके ऊपर वीडियो आने वाली है, और एक एडिटिंग का भी झमेला है, तो इस वजह से भी आपको थोड़ी लेट हो रही है बेसिकली, नहीं तो ऑलरेडी मैं रेडी हूँ इस हेडफोन के बारे में बात करने के लिए। आई डोंट नो कब आएगी वीडियो, बट आएगी। एंड लैपटॉप के ऊपर भी वीडियो है, इस माइक्रोफोन के ऊपर भी वीडियो है, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मैंने अपलोड करी नहीं है बट रेडी है कहने का मतलब, जिनके रिव्यूज़ के लिए मैं रेडी हूँ कहने का मतलब, तो उसके बारे में बात करें। बाय द वे लैपटॉप कोई लैपटॉप भी कोई लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नहीं है, तो मैंने एक मिड रेंज आई थिंक कहूँगा मैं लैपटॉप चुना हुआ है, और क्यों चुना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे एक वीडियो में डिटेल में फ्यूचर में, और वहाँ पर मैं सारे डिटेल में आपको बताऊँगा प्रॉबेबली। एंड जैसे कि लैपटॉप में भी मेरे को बहुत मन है मतलब मैकबुक लेने का, बट अगर वही स्मार्ट थिंकिंग लगाऊँ तो मैकबुक एक्चुअली में मेरे लिए है ही नहीं, वेस्ट ऑफ मनी होता मोस्ट इन मोस्ट केसेस। M सीरीज़ वाली की बात कर रहा हूँ करूँ तो वो अलग बात है थोड़ी सी, वहाँ पे अगर मान लो आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो। बट मेरे को एडिटिंग लैपटॉप पे पसंद है ही नहीं, मैं हमेशा पीसी पे ही करता हूँ क्योंकि बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है मेरे को। तो बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से मेरे लिए लैपटॉप मैकबुक सूटेबल नहीं है एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है मेरे लिए, मेरे यूज़ केस पे। ऑब्वियसली प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचनी चाहिए और इस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे उस चैनल पे एंड इस चैनल पे भी। इस चैनल पे जैसे फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप मैंने वर्क के लिए चुना है, तो ये लैपटॉप वर्क के लिए क्यों चुना वो पर्सपेक्टिव आ सकता है कि क्यों वर्क के लिए अच्छा है, वो पर्सपेक्टिव से एक वीडियो आ सकता है मे बी। तो ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में। हाँ, पॉइंट्स कुछ बता देता हूँ। तो टेक कंज्यूमर में जो बिगेस्ट इन्फ्लुएंस होगा ना हमारे वीडियोस में, वीडियो को बनाने में, रिव्यूज़ वगैरह में जो भी हो उसमें, वो होगा दो जो एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे जिनका इन्फ्लुएंस आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा बेसिकली या स्क्रिप्ट में। एक बजट और दूसरा वैल्यू फैक्टर, जो कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है ऑब्वियसली। तो बजट और वैल्यू फैक्टर कहने का मतलब, अब ये भी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सैमसंग का गैलेक्सी बड्स 2 प्रो है एंड लेट्स से मेरे पास एक चाइनीज़ ब्रांड का सेम प्रोडक्ट होता सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट, तो और सेम सर्विस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आई डोंट केयर कि ये सैमसंग का है और वो एक सिंपल चाइनीज़ प्रोडक्ट है, मैं वहाँ पे वैल्यू को फैक्टर करूँगा, सिर्फ ब्रांड पे नहीं जाऊँगा। ऑब्वियसली ब्रांड की भी वैल्यू होती है, आई नो, बट अगर वो ब्रांड जो दूसरा ब्रांड है वो भी सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सिमिलर क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो फिर ब्रांड नेम से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वैल्यू वाइज सेम हो गया। तो मैं वैल्यू को कंसिडर करने वाला हूँ ना कि ब्रांड को। तो जैसे अभी मैंने मैकबुक को अच्छा बोला क्योंकि मैकबुक एक्चुअली में अच्छा है। हाँ, वहाँ पे स्टोरेज में वो लोग बहुत जिंदी हैं, चोरी करते, ऑलमोस्ट चोरी जैसा लगता है, स्कैम जैसा लगता है, स्टोरेज अपग्रेड और रैम अपग्रेड, बट अदरवाइज़ मैकबुक बहुत अच्छा है। तो मैं वहाँ पे एप्पल का इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जेनविनली अच्छा है। और जैसे कि मैंने बताया, रैम अपग्रेड और स्टोरेज अपग्रेड एकदम स्कैम जैसा है। तो जहाँ पे जो है मैं वही बोलूँगा, मेरे लिए बजट और वैल्यू ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे मेरे सारे वीडियोस में उस चैनल पे। और जैसे फॉर एग्जांपल मैकबुक बहुत महंगा है अगर सिर्फ प्राइस को देखे तो दूसरे लैपटॉप्स के हिसाब से, बट क्या वो वैल्यू फॉर मनी है? आई थिंक यस। तो ये बात है। और जब मैं कहता हूँ कि बजट एक फैक्टर रहेगी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट्स रिव्यू करूँगा या सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगा, नहीं, वैल्यू वाइज, ठीक है। बजट का मतलब ये नहीं होता कि कम प्राइस, बजट का मतलब होता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो या आप कितना आपके पैसे एलोकेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल फ़ोन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ज़िंदगी में 40-50,000 या उससे कभी ज़्यादा फ़ोन पे खर्च करूँगा, वेस्ट ऑफ मनी लगेगा मेरे को। अभी जैसे मेरे पास जो फ़ोन है वो 30,000 के आसपास मैंने खर्च करी थी एंड वो भी तब करी थी जब मेरे पास कैमरा नहीं था, इसलिए मैं वीडियो मतलब फ़ोन से शूट करना चाहता था इसलिए। अभी मेरे को लगता है कि ओवर प्राइस्ड फ़ोन है मेरे लिए, मतलब ज़्यादा है। तो ये पॉइंट है। तो मेरे को ज़रूरत है नहीं इससे ज़्यादा महंगे फ़ोन की। मे भी ट्राई करने के लिए या देखने के लिए ले सकता हूँ, बट एक्चुअल में मेरे को ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह की बात है। तो अफोर्ड तो मैं कर सकता हूँ बट इसके लिए मैं इतना बजट एलोकेट नहीं करूँगा। आई थिंक 1 लाख से ऊपर तो कभी ज़िंदगी में नहीं जाने वाला, आई थिंक मैं प्रॉब्ली अमीर भी हो जाओ तो भी नहीं, अंबानी हो तो भी नहीं प्रॉब्ली, ऑब्वियसली तब का तब देखेंगे, बट आई डोंट थिंक मैं उतना खर्च करूँगा सिर्फ एक फ़ोन के लिए। तो उस तरह के डिसीजंस देखने को मिलेंगे और उस तरह के इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे वीडियोस में। तो हम वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे बजट पे। और उसी पे और एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से वो सेम बर्ड्स वाला एग्जांपल, ठीक है। अब वो दूसरा ब्रांड जो है, लेट्स से वो 10 रुपये कम प्राइज़ है या 10% कम प्राइज़ है या 5% कम प्राइज़ है, जो भी है, ठीक है। तो वैल्यू वाइज मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि सेम चीज़ें मिल रही हैं आपको, वैल्यू फैक्टर सेम चीज़ है, बट बजट में वो ज़्यादा फिट बैठ रहा है। तो उस केस में मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये सैमसंग है। तो इस तरह के रिव्यूज़ वगैरह आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड येस, ऑफकोर्स मैं ब्रांड कंसिडर करूँगा अगर सर्विस वाइज दोनों डिफरेंट होंगे तो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा ब्रांड हो जैसे रियल मी के काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं फिलहाल, पर्सनली मेरे को पर्सनली मेरे को ट्रस्ट नहीं है उन पे। तो अगर मान लो वो दूसरा ब्रांड रियल मी होता तो प्रॉब्ली मैं कहता कि सैमसंग के साथ जाओ। तो डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बट बजट और वैल्यू फैक्टर जो है वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंस रहेंगे मेरे सारे वीडियोस में। यहाँ पे मैंने कुछ नोट करा था, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट प्रोमोट टेक दैट इज़ इंटरेस्टिंग बट डजेंट सर्व मच पर्पस इन पीपल्स लाइफ जनरली। आई थिंक ये मैंने एक्सप्लेन कर दी, राइट, वो फ्लैगशिप वाली एग्जाम्पल के साथ, कि ज़्यादातर लोगों की उसकी ज़रूरत होती नहीं है तो कोई फ़ायदे की बात नहीं है। जैसे साइबर ट्रक लेके चलते हैं, ठीक है, टेस्ला का साइबर ट्रक, वो ज़्यादातर लोगों के लिए यूज़फुल है ही नहीं। इंटरेस्टिंग है, बहुत फैसिनेटिंग है ऑब्वियसली, बट ज़्यादातर लोगों के लिए यूज़फुल है ही नहीं। तो उस तरह के वीडियोस आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अब ये एग्जाम्पल है, US वाला एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली मेरे को अभी दिमाग में आ नहीं रहा इंडिया इंडिया स्पेसिफिक, बट ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं टेक में जो बाहर से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं, काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है। एंड मे बी मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करूँगा, मे बी उसके बारे में बात करूँगा, बट मे बी ज़्यादातर केस में आपको उस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं जो जनरली लोग अपने लाइफ में रिलेट ना कर पाए अपने लाइफ से, या जनरली अपने लाइफ में लोग यूज़ ना कर पाए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को या ऐसे चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाला उस चैनल पे। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन हाउ टेक इज़ हेल्पिंग और इम्प्रूविंग द कंज्यूमर्स लाइफ एंड नॉट हाउ मच कैपेबल और इंटरेस्टिंग द टेक एक्चुअली इज़। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं बताना चाहता था, और ये भी ऑब्वियसली मेरे वीडियोस का पार्ट रहेगा। ये मैं रिसेंट एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे चैनल पे, वो टेक कंज्यूमर चैनल पे, टैब S7 Plus, सैमसंग का जो गैलेक्सी S7 Plus टैब है उसके ऊपर वीडियोज़ है। तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं कि ये बेटर है, ये बेटर है। मतलब मैंने कुछ दो तीन टैबलेट से कंपेयर कर दिया था, लो बजट वाले टैबलेट से। तो सबका कमेंट पढ़ के समझ में आ जाता है कि उनको बस स्पेक्स से मतलब है, वो सिर्फ स्पेक्स को देख रहे हैं कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, इसमें इतना रैम है, वगैरह वगैरह। बट मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, वो मैं उस तरह का टेक वीडियोस नहीं बनाना चाहता जहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये बेस्ट है, आप यही लो। हर किसी का नीड डिफरेंट होता है, हर किसी का वर्क फ्लो डिफरेंट होता है, हर किसी के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो उस हिसाब से आपका जो भी बेस्ट प्रोडक्ट हो वही बेस्ट प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी इस फ़ोन को लेके चलते हैं, तो 30,000 में आई एम प्रिटी श्योर कि इससे बेटर बेटर फ़ोन अवेलेबल हैं। बट क्या ये मेरे लिए बेस्ट फ़ोन था? यस, जबकि मेरे को पता है इससे बेटर फ़ोन्स अवेलेबल हैं। एंड एक सैमसंग का फ़ोन था 15,000 के आसपास, जो मेरे टीममेट्स ने ख़रीदा था, मेरे को अभी मॉडल याद नहीं है, उसमें फ़ोटोज इससे बेटर आते थे। बट मेरे को फ़ोटो से फ़र्क था नहीं, मेरे को चाहिए था फ्रंट पे अच्छा कैमरा जो वीडियो रिकॉर्ड कर सके, वो भी स्टेबलाइजेशन के साथ, जो कि इस फ़ोन पे अवेलेबल है। तो मेरे लिए ये बेस्ट फ़ोन था, ये मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ। एंड वो बंदा, उसको फ़ोटोग्राफी ज़्यादा पसंद है, उसको अच्छे फ़ोटोज़ चाहिए। एंड उसके उसके जो फ़ोन है, उसका जो फ़ोन है वो बेटर फ़ोटोज़ लेता है, तो वो उसके लिए बेस्ट फ़ोन है। कहने का मतलब सबके लिए डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करती है। एंड आपको मतलब आपके नीड्स के हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट चुनना चाहिए, और मैं आपके नीड्स के हिसाब से ही कोई बेस्ट प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट है बस यही लो। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर से फ़ोन के एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra सबके लिए ऑब्वियसली बहुत तगड़ा फ़ोन है, बहुत बेस्ट फ़ोन है। बट मैं क्या सच में बेस्ट फ़ोन है? मतलब बेस्ट फ़ोन है एज स्पेक वाइज, एज टेक्नोलॉजी वाइज, बट क्या सबके लिए वो बेस्ट फ़ोन है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ही लेके चलो, मैं एक टेक इंथ्यूजियास्ट हूँ, मेरे को पसंद है टेक, बट मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे पास भी वो फ़ोन एक्चुअल में वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जितने सारे फीचर्स वगैरह हैं वो मैं कभी यूज़ करूँगा ही नहीं, या मे बी टेस्टिंग के लिए इनिशियली यूज़ कर लूँ, उसके बाद वो बस पड़ा ही रहेगा। अभी ये 30,000 का फ़ोन जो है वो भी पड़ा ही रहता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, क्योंकि मैं अभी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियोस। तो कहने का मतलब वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, वो मेरे लिए बेस्ट फ़ोन नहीं है। मेरे लिए बेस्ट फ़ोन अभी यही है 30,000 वाला, जो मेरे सारे काम कर देता है। तो आई थिंक होपफुली मैं समझा पाया। बेसिकली कोई प्रोडक्ट आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर रहा है, उस हिसाब से मैं रिव्यूज़ देने की कोशिश करूँगा, ना कि लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ये पॉइंट था। ओके, सेकेंड पार्ट को भी मैंने अभी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक रिकॉर्ड कर लिए। आई थिंक इसको मैं 30 मिनट्स तक रिकॉर्ड करने के बाद ख़त्म कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है एक्चुअली, मैंने काफ़ी ज़्यादा ही बात कर ली, तो मे बी नेक्स्ट वाले एपिसोड में रिकॉर्ड करूँगा। तो हाँ, बाय द वे, एपिसोड लेंथ में 40 मिनट्स के लगभग रखने की कोशिश करूँगा सारे पॉडकास्ट पर, तो इसलिए मैं यहाँ पर लगभग 60 मिनट्स पर टर्न ऑफ कर दूंगा, क्योंकि कट के बाद आई थिंक 40 मिनट्स या उससे कम के ही एक्चुअल फुटेज निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था द स्विच टू मिररलेस कैमरा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी हद तक बात कर ली है। बाय द वे, उसके इस कैमरा के ऊपर मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ। पुराना कैमरा है बाय द वे, ऐसा कोई लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कैमरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। जैसे आई थिंक आप समझ ही गए होगा मैं किस तरह से सोचता हूँ प्रोडक्ट्स के लिए या टेक रिलेटेड चीज़ों के लिए, तो उस हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि मैं किस चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये कैमरा बाय द वे, आई डोंट नो बताना चाहिए ना, सोनी का है, GV10 करके, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो, जाके चेक कर सकते हो। बट बाय द वे, जाके खरीदी मत लेना, रिव्यू वगैरह देखना, क्योंकि डेफिनेटली इससे बेटर कैमराज अवेलेबल है सेम प्राइस पे, एंड बेटर इन द सेंस सिर्फ स्पेक्स के मामले में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैमरा बेटर हो सकते हैं, इस वजह से कह रहा हूँ। अभी जितना एक्सप्लेन किया था ना, इतना लंबा चौड़ा, समझ में तो आया होगा। तो हर किसी के लिए बेस्ट नहीं हो सकता, बट क्या मेरे लिए बेस्ट है? यस। तो जाके खरीदी मत लेना, रिव्यू वगैरह देख लेना, इसलिए मैं नहीं बता रहा था प्रोडक्ट का नाम, बट प्लीज़ रिव्यू वगैरह देख लेना। आई थिंक आप तो समझ गए होंगे कि मैं किस तरह से देखता हूँ चीज़ों को। तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाने का मन है, एंड मेनली मैंने कैमरा इसलिए नहीं लिया था कि एक होता है ना कि शौक या रीज़न नहीं था, दो रीज़न थे। एक तो मेरे को ऑब्वियसली क्वालिटी इंप्रूव करनी थी, और सीखना था कैमरा, प्रोफेशनल कैमरा, और इसीलिए मैंने बजट वाला सस्ता कैमरा लिया है बाय द वे, क्योंकि मेरे को आता नहीं है, इससे पहले मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, तो पहले मैं सीखना चाहता हूँ। देन एक फुल फ्रेम सेंसर मे बी मैं लूँगा, फुल फ्रेम कैमरा, एक पावरफुल वाला मे बी, बट पहले मैं सीख लूँ इससे ही, है ना। अभी तो मेरे पास लेंस भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो किट लेंस है वही है, तो पहले मैं लेंस लूँगा, देखता हूँ, ट्राई करूँगा, सीखूँगा, एंड देन डिसाइड करूँगा कि कौन सा नेक्स्ट कैमरा लेना है। बट ये मेरे लिए लर्निंग के लिए मैंने पहला कैमरा चुना है, तो ऑब्वियसली मैंने बजट पे चुना है, और बजट पे ये बहुत बढ़िया कैमरा है। इसके बारे में आप ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारे हैं देख सकते हो, और मैं खुद भी आई थिंक प्रोबेबली वीडियो एक बना दूंगा। सेकेंड रीज़न ये था कि मेरे को मल्टीपल एंगल्स चाहिए थे ताकि मैं अपना एडिटिंग ईजी कर सकूँ। अभी तो खैर AI टूल्स वगैरह के आने की वजह से एडिटिंग थोड़ा ईजी हो गया है, बट अभी भी आई थिंक बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती, इसलिए मैंने लिया था। तो अभी दो एंगल से शूट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाली एंगल जो है ये मेरी फ़ोन है, और ये वाली एंगल जो है ये कैमरा है। अब आते मैं और भी एंगल शूट कर सकता था, अगर टैबलेट भी यहाँ पे पड़ी हुई है, टैबलेट का कैमरा लैपटॉप सामने, तो आई थिंक दो एंगल काफ़ी है, और ख़ास करके क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इस वजह से मैं और एंगल ऐड नहीं कर रहा। तो इससे बी रोल्स ज़्यादा लगाने नहीं पड़ते, बी रोल्स का झमेला बहुत कम हो जाता है, और कट्स वगैरह का, मोशन वगैरह का झमेला कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल एंगल होते हैं, मल्टीपल फुटेज होते हैं, जिसपे आप स्विच करते रहते हो, तो बोरिंग भी नहीं लगता, प्लस आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मल्टी एंगल एडिटिंग, मल्टी कैम एडिटिंग कहते हैं इसे, बहुत ईजी होती है इसको एडिट करना। मैं अभी डाविंची रिजॉल्व में ये करता हूँ, फिल्मोरा में एडिट करता हूँ, दोनों में करता हूँ, फिल्मोरा का भी लिंक डाल दूंगा, बताया अफिलेट हूँ, दोनों में करता हूँ, बट मल्टी एंगल एडिटिंग अभी डाविंची रिजॉल्व में बेटर है, तो वहाँ पे बहुत इजी होता है, बस बटन्स प्रेस करते रहता हूँ टाइम टू वीडियो देखते हुए, और ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे स्विच होता रहता है। अभी मैं पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ, एडिटिंग वाले वीडियोस देख लेना, तो काफ़ी इजीली मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल स्विच करके इंटरेस्टिंग वीडियो फटाफट बना सकते हो, तो इस वजह से मैंने लिया था। तो मल्टी एंगल एडिटिंग करता हूँ, जिससे बहुत ईजी हो जाता है, और ज़्यादा बी रोल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये रीज़न था। स्विच टू अर्गोनॉमिक चेयर, अगर आपने नोटिस किया हो पीछे, ये है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, बट पता नहीं इस पर बात करना चाहिए या ये इससे पहले अगर आपने नोटिस करा, तो मैंने मेरे सारे वीडियोस वगैरह पे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक दिख रहा है, सारे के सारे जो चेयर्स हैं वो प्लास्टिक चेयर्स हैं, जो लोकल मार्केट पे आपके सस्ते में मिल जाती है बेसिकली, वही चेयर्स हैं। तो मैं ऑब्वियसली सोच रहा था कि अर्गोनॉमिक चेयर पे मूव कराया जाए, एंड काफ़ी महंगा वाला सोच रहा था मैं, क्योंकि कुछ ट्राई करना था, एक्चुअली में मेरे को आइडिया भी था नहीं, तो वो भी एक रीज़न है। तो हाँ वही सब रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने ये भी अपनी प्रायोरिटी वाली लिस्ट, परचेस विथ प्रायोरिटी लिस्ट PWP, वहाँ पे लिस्ट में डाला हुआ था, बट काफ़ी नीचे था। ये एक अर्जेंट परचेस है एक्चुअली, क्योंकि मैं बहुत सारे चेयर मैं तोड़ चुका हूँ। वो क्या होता है कि वीडियोस वगैरह एडिट वगैरह करते वक्त कंप्यूटर पे काफ़ी टाइम तक काम करने के बाद ये करता हूँ मैं, पीछे बार बार भूल जाता था कि प्लास्टिक चेयर है, ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा, और ये करता था और टूट जाती थी। तो मल्टीपल चेयर्स तोड़ने के बाद मेरे को लगा कि ओके अब ज़रूरी है, अर्जेंट है। एंड सिर्फ वो रीज़न नहीं था, जब आप प्लास्टिक चेयर पे बैठना काफ़ी देर तक बहुत दिक्कत देती थी, बैक पेन वगैरह बहुत ज़्यादा होता था, एंड ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता था। तो वो भी एक प्रॉब्लम थी जो ये चेयर प्रॉब्ली सॉल्व कर रही है। एंड इस चेयर पे बाय द वे इस चैनल पे एक वीडियो आ सकती है अब। हाँ ये भी एक एग्जांपल है बाय द वे, ये अब टेक रिलेटेड प्रोडक्ट तो है नहीं, या कह सकते हैं थोड़ी बहुत रिलेटेड है, बट कम्प्लीटली टेक रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है। तो टेक कंज्यूमर चैनल में डालना थोड़ा अजीब लगेगा, बट इस चैनल में डेफिनेटली डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस पर भी बात करनी है। तो ये भी एक चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और डिफरेंस बता रहा हूँ, जब पॉइंट याद आया तो बता दिया मैंने। तो हाँ ये चीज़ है, और यस अच्छी लगी। एंड अभी काफ़ी ज़्यादा देर तक बैठ पाता हूँ, जैसे अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे होने वाला है, ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं हो रहा नीड, और काफ़ी रिलैक्स है। क्योंकि भले ही बॉडी यहाँ पे आपको सीधी दिख रही होगी, मैं एक्चुअली अपने पैर को मूव कर रहा हूँ साइड टू साइड, जो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बना देते हैं लाइफ को। बॉडी को थोड़ा मूव करते रहता हूँ, जिससे फटीग कम फील होता है और ज़्यादा देर तक बैठ पाते हैं। वैसे क्या आप फॉर प्रोफेशनल्स, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ओके हाँ यहाँ पे मैंने चेयर के बारे में जितनी कुछ बात करनी थी कर लिया है। ओके 3 ही टॉपिक बचे हैं, एंड 26 मिनट अभी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो आई थिंक मैं बात कर लेता हूँ। बाय द वे मैंने थ्राइव थीम से माइग्रेट कर लिया है, ऑलमोस्ट माइग्रेट कर ही रहा हूँ, अभी भी कुछ पेजेस वगैरह कुछ वेबसाइट्स वगैरह बाकी है मूव करना। जो जब से ऑसम मोटिव्स ने उन्हें एक्वायर किया है, तब से मेरे को पसंद नहीं आ रहा बेसिकली। एक तो बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक कर दिया गया है, तो कोई भी, जब मैं अभी नया, मैं बहुत लोगों को रेकमेंड करता हूँ ऑब्वियसली, बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट वगैरह पे लिंक है, मैं खुशी खुशी रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे और बहुत अच्छे प्राइसिंग पे अवेलेबल थे। तो अचानक से ये जो चेंज वगैरह हुए, उसके वजह से अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं जहाँ जहाँ पर रेकमेंड मैंने किया हुआ है, जहाँ जहाँ पर लिंक वगैरह दिया हुआ है ना, तो लोग वहाँ पर जाते हैं और फिर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है उन्हें, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है और कन्वर्जन रेट एकदम सीधे इस तरह से ड्रॉप हुई है, ऑब्वियस रीजंस की वजह से। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मेरे को अब ये पसंद नहीं आ रहा प्रोडक्ट। बाय द वे बहुत तगड़ा है अभी भी, पर एक मतलब इंडिविजुअल्स के लिए या बिगिनर्स के लिए ये अब बिल्कुल भी सही प्रोडक्ट नहीं लग रही मेरे को, जो कि ज़्यादातर मेरी ऑडियंस है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों को रिकमेंड करना चाहता हूँ जो खुद भी यूज़ करूँ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल बिजनेसेस या प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अर्न करते हैं, उनके लिए परफेक्ट है। एंड अगर आप वो उनमें से एक हो और आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं फ्यूचर में भी ऑब्वियसली रिकमेंड करते रहूँगा, बट आई थिंक अभी मतलब जितना मेरे को पसंद आता था, जितना मैं तारीफ़ करता था, अब आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी, अब मेरे को उतना पसंद नहीं है, पॉइंट ये है। तो मैं मूव कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, और अभी मैं फ्री टूल्स पे स्विच करके देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ बेसिकली कि सिर्फ फ्री वाले वर्जन्स यूज़ करके कितना अच्छा साइट बनाया जा सकता है टूल्स के सहारे। ऑब्वियसली कोडिंग नहीं करूँगा मैं जानबूझकर, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कोई अगर एक बिगिनर सिर्फ फ्री टूल्स को यूज़ करके अगर एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहे अच्छा अच्छा खासा, तो कितना बना पाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं WP स्पेक्ट्रा करके एक प्लगइन है वो यूज़ कर रहा हूँ, ब्लॉक बिल्डर है बेसिकली, अल्टीमेट ब्लॉक्स फॉर गुटेनबर्ग था वो पहले, अस्त्रा थीम वालों ने बनाया था, तो वही है प्लस अस्त्रा थीम है फ्री वर्जन। तो वो यूज़ करके मैं सारे वेबसाइट्स को बना रहा हूँ, देखते हैं कैसा होता है। एंड अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है, माइग्रेशन, बट अच्छा खासा चल रहा है, आई थिंक इनफ है, क्योंकि काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स बन रही है, और ऑलमोस्ट सारे पेज मैं रेप्लिकेट कर पा रहा हूँ, जो कि मैं थ्राइव आर्किटेक्ट से बना के रखी थी, और बिना कोडिंग के हुए बाय द वे। तो वो एक अच्छी साइन है, एंड प्रोबेबली सबके लिए अच्छी साइन है, जो नए लोग जो मेरे कोर्स वगैरह से आते हैं या लिंक वगैरह से आते हैं, उनके लिए भी। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, मैंने मेल चिम से भी स्विच किया है कन्वर्ट किट पे। इसमें दो रीज़न थे, एक तो मेरे को अपने आप को फोर्स करना था कि थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दो ईमेल लिस्ट पे, क्योंकि मैं फ्री की ईमेल लिस्ट होती है मेल चिम में, तो ज़्यादा फोकस कर नहीं रहा था। इसलिए मैंने कन्वर्ट किट पे स्विच किया, क्योंकि वहाँ पे पेड प्लान्स ले रखे हैं मैंने, तो पेड प्लान्स जब आप लेते हो तो बेसिकली आपका अटेंशन थोड़ा सा चला जाता है, और बस यही रीज़न थी स्विच करने की। और कन्वर्ट किट बेटर है बाय द वे, पेड प्लान खास करके चीपर भी है अगर पेड प्लान की बात करें तो मेल चिम से। या डेफिनेटली बेटर है, पहले दोनों में फ्री प्लान अवेलेबल है, तो मैं अभी कन्वर्ट किट ही रेकमेंड करूँगा फ्री वर्जन के लिए भी, एंड ऑब्वियसली पेड वर्जन लोगे तो आपके लिए बढ़िया है। इसका भी लिंक डाल दूंगा। एंड जैसे कि मैंने बताया, डब्ल्यू पी स्पेक्ट्रा मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। फ्री वर्जन ही काफ़ी है, ठीक है। एंड उसका टेम्पलेट्स बना के मैं वो सेल भी कर रहा हूँ मेरे कॉफ़ी पेज पे, बाय मी ए कॉफ़ी पेज, कॉफ़ी पेज और पैट्रियन, सब जगह आप आपको मिलेगी। और जो मेंबर्स है, पेड मेंबर्स है, चाहे चैनल की बात हो या उधर क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स या फैन पेज वगैरह पे, तो उनको फ्री में अवेलेबल है। एंड फ्यूचर में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ मैं थ्राइव थीम्स के साथ करना चाहता था, बट अब खैर बदल गया सब कुछ। एंड हाँ, बस इतना ही है। तो सारी चीज़ों के लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली और एक टॉपिक है, बट आई थिंक बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट पता नहीं क्या किस टॉपिक पे होगी। बेसिकली अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो ही फॉलो करो, तो ही सब्सक्राइब करो, यही कहना चाहूँगा, ठीक है। सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बढ़ाना ही है तो टेक चैनल पे जाके बढ़ाओ, वहाँ पे मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ताकि एड मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकूँ। अभी जो अर्निंग होती है वो सिर्फ अमेजन एफिलिएट अर्निंग होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मल्टीपल साइट से आती है, तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि टेक कंज्यूमर से कितनी आ रही है यूट्यूब चैनल से, बट बहुत कम आ रही है। तो हाँ, वहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर पहुँचने में हेल्प कर सकते हो टेक कंज्यूमर चैनल पे, लिंक कर दूंगा वो भी। एंड हाँ, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।